वेलकम वंस अगेन। अभी हम लोग जिस सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं उसका नाम है राज योगा इन ओलंपिज्म। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि किस तरह से राज योगा अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ओलंपिक्स में, उसके बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत ही हायर केडर की लॉबी फैकल्टी हमारे साथ मौजूद है, जिन्हें मैं स्टेज पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगी। सबसे पहले हमारे बीच में डॉक्टर राकेश मलिक, आपकी स्पेशलिटी है बास्केटबॉल, आप डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से हैं। प्लीज वेलकम डॉक्टर राजेश मलिक। आप हमारे साथ अपना प्रेजेंटेशन सबमिट करेंगे। फिर मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर राम निवास यादव, आपकी स्पेशलिटी है एथलेटिक्स, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 42 चंडीगढ़। प्लीज इनका स्वागत कीजिए मिस्टर राम निवास यादव। डॉक्टर अजीत सिंह, आपकी स्पेशलिटी है एथलेटिक्स, एसोसिएट प्रोफेसर पीजी गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 चंडीगढ़। डॉक्टर अजीत सिंह। डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल, आप नेचुरोपैथ हैं दिल्ली से, प्लीज वेलकम डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल। अब मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर भीष्म सिंह को, आप क्रिकेट में स्पेशलाइज्ड हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ। मिस्टर भीष्म सिंह। ओम शांति। डॉक्टर राकेश मलिक जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि जो आपका प्रेजेंटेशन है वो प्लीज सबमिट कीजिए। मेरा आप सभी से अनुरोध है इस सेशन को खास ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको भी पार्टिसिपेशन के लिए क्या कहते हैं इंटरैक्टिव सेशन करने वाले हैं, तो कुछ आपकी भी अगर क्वेरीज होंगी तो मैं जरूर चाहूंगी कि आपके इनपुट्स आए।
ओम शांति। सबसे पहले तो मैं बाबा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया अपने विचारों को आप सबके सम्मुख रखने का। हम आपके सम्मुख कोई नई विचारधारा का विवरण करने नहीं आए, बल्कि उस फिलॉसफी का जिक्र करने आए हैं जो कि कई सदियों पुरानी है। आपको पीछे चित्र में एक बालक नजर आ रहा होगा जो कि सफेद रंग की टी शर्ट पहने हुए है और 5 रिंग उसकी छाती पे लगे हुए हैं जो कि ओलंपिक खेलों का प्रतिचिन्ह है। उस प्रतिचिन्ह को के बारे में जिक्र करने के लिए हम 5 भाई यहां पर आपके सामने हैं, और जो भूमिका हमें जो स्थान प्रदान किया हुआ है वो बालक की सफेद रंग की टी शर्ट से नजर आता है जो हमारे संस्था ने हमें प्रदान किया है। परम कुमारी जी, मेरे मित्र नीरज ने इस कॉन्फ्रेंस के बारे में जिक्र किया था कि ये कॉन्फ्रेंस है, इसमें राजयोग और ओलंपिज्म का कोऑर्डिनेशन है कि आपस में इसको कैसे कोलैबोरेट करना है। तो इसको कोई कोलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है, ये तो सदियों से कोलैबोरेटेड है। सब इसमें जिस चीज की जरूरत है कि वो हमें इसकी जो बीच में एक जो हल्की सी एक गैप है उसको पहचानने की जरूरत है कि वो गैप कहां पर है, उसको कैसे समराइज करना है, कैसे कलेक्ट करना है। तो इसी विषय के ऊपर मैं आप सम्मुख इस चर्चा के लिए आया हूं, और विषय है ओलंपिज्म एंड राजयोगा एन एम्बेसडर फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ पीस एंड ह्यूमनिज्म। यहां पर जो शब्द मैंने एम्बेसडर की या राजदूत की बात की है, वो राजदूत कौन है? हम सभी लोग उसके राजदूत हैं, आप सब भाई बहन, हम सब, और हम देश के अलग अलग प्रांतों से यहां पर इकट्ठे हुए हैं, और हमारा यहां पर आने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है कि सबसे पहले तो हम एक दूसरे को जान लें, एक दूसरे को समझ लें कि हम एक होते हुए भी एक दूसरे से अलग क्यों थे, कहां पर वो विभिन्नताएं थी, कहां पर उस विभिन्नताओं को कम करने की जरूरत थी, और एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लें और एक्मेटाइज कर लें, एक दूसरे की फिलॉसफीज में मिल जाएं, जुड़ जाएं। और दूसरा यह था कि जो खेल और से संबंधित जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं जिनको ओलंपिक गेम्स या ओलंपिज्म में यूज करते हैं, उसमें योग का कहां कहां योगदान है, उस मेमोरीज को दोबारा कलेक्ट करें, रिकलेक्ट करें और उसके पर काम करें। और उन मेमोरीज को कलेक्ट करने के बाद एक नई फॉर्मेशन करें, नई एक फिलॉसफी बनाएं जिसके द्वारा हम आने वाले खेल भविष्य में और मानवता के लिए, शांति के लिए कोई काम कर सकें, एक शांति प्रिय विश्व का निर्माण कर सकें, जो कि दोनों ही जो फिलॉसफीज हैं उनका मुख्य उद्देश्य है। अब प्रश्न ये उठता है, क्योंकि हम यहां पर इकट्ठे हुए हैं दोनों को, दोनों फिलॉसफी के बारे में समझने के लिए। राजयोग के बारे में हम पिछले दो दिन से काफी चर्चा कर रहे हैं और इसको और ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि इस कॉन्फ्रेंस का टाइटल में ओलंपिज्म को साथ में जोड़ा गया है, तो सबसे पहले यह समझना भी बहुत जरूरी है कि ओलंपिज्म है क्या चीज। कई लोग ओलंपिक गेम्स को ही ओलंपिज्म ना समझ लें, ये बहुत ही अलग चीज है। ओलंपिक गेम्स तो ओलंपिया एक जगह है, वहां पर खेल होते थे, इसलिए उसका नाम ओलंपिक गेम्स रखा गया, लेकिन उसकी जो सिद्धांत है, उसकी जो फिलॉसफी है, वो बिल्कुल ही अलग है। फिलॉसफी क्या कहती है? फिलॉसफी ये कह रही है कि हमें अपने शरीर, इच्छा और माइंड के बीच में बैलेंस बनाना है, और उस बैलेंस के थ्रू खेलों का, अपनी संस्कृति का और अपने एजुकेशन का एक कोलैबोरेशन करना है, उसका विकास करना है, उसको एक नई ऊंचाइयों पर लेके जाना है। और इस ऊंचाइयों के द्वारा ही हम जिंदगी में अलग अलग किस्म की सफलताएं और सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। उनमें से सबसे प्रथम जिसके बारे में जिक्र करते हैं, द जॉय ऑफ एफर्ट्स। आपको कोई भी नया काम शुरू करना है तो उसके पहले आपके एफर्ट्स जारी हैं। जैसे कि हम आज राजयोग और ओलंपिज्म को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पहले जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करके कैसे आगे चलाना है उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, जो ये अपना इस संस्था ने हमें मौका दिया इसको करने के लिए। उसके साथ साथ जो इस जो वैल्यूज है ओलंपिज्म की है, राजयोग की है, उसकी उनकी जो उनमें जो गुण है, जो लोगों के बारे में, जिनको लोगों के उसके पता नहीं है, उसके बारे में लोगों को ज्ञान दें, एजुकेशन दें कि उसको कैसे हम उसको अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। और दोनों ही फिलॉसफियां इस बारे में जिक्र कर रही हैं कि कैसे हम जो सामाजिक और विश्वज्ञात जितने भी एथिकल वैल्यूज हैं उनका कैसे हम सम्मान करें, कैसे उसको एक नई ऊंचाइयों पर लेके जाएं, कैसे उसका पालन करें।
आप सभी ध्यान से इस बातों को सुनिए, क्योंकि आपकी भी बारी आने वाली है। आप लोगों से हम कुछ सवाल पूछेंगे और आप लोगों की ओपिनियंस भी लेंगे। ओम शांति।
उसके बाद फिलॉसफीज की फिलॉसफी, जो ओलंपिज्म फिलॉसफी जिस पे निर्धारित है, जो जगदीश भाई जी ने इसमें जिक्र किया, रिस्पेक्ट, फ्रेंडशिप और एक्सीलेंस, ये तीनों जो प्रथम तीन जो बेस हैं ओलंपिक के, ओलंपिज्म के, वो ओलंपिक वैल्यूज के ऊपर बेस्ड हैं। और जो नीचे के चार हैं, इक्वालिटी, करेज, इंस्पिरेशन, ये पैरालंपिक से रिलेटेड है। अगला विषय ये था कि जिसके बारे में जिक्र करते हैं कि ह्यूमैनिज्म क्या चीज है। अब हम सभी लोग इस बारे में जिक्र करते रहते कि ह्यूमैनिज्म क्या चीज है, लेकिन ह्यूमैनिज्म क्या है? ह्यूमैनिज्म है कि हम अपना जीवन एक इंसान के रूप में किस तरीके से निर्वाह कर रहे हैं, उसी को साधारण भाषा में ह्यूमैनिज्म कहेंगे। और इस ह्यूमैनिज्म वैल्यूज को हमने स्प्रेड, हमारा जो ओलंपिक जो स्पिरिट है, जो ओलंपिज्म है, वो कैसे स्प्रेड कर रही है, वो तीन तरीके से जो ओलंपिक जो सिस्टम है वो इसको स्प्रेड कर रहा है, एजुकेशन के थ्रू, आर्ट एंड कल्चर के थ्रू, स्पोर्ट्स एंड गेम्स के थ्रू। जहां तक एजुकेशन का संबंध है, इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी, जो ओलंपिया में स्थित है, वो इसके बारे में पूरे विश्व में इसके बारे में लोगों को एजुकेशन एस्पेक्ट डिलीवर कर रही है, उसके लेक्चर्स करवा रही है। ओलंपिक ट्रू सेंटर वहां पर है जो कि इससे रिलेटेड जितने भी संबंधित जानकारियां हैं, लोग ज्ञान है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही आर्ट एंड कल्चर का है। ओलंपिक सिर्फ खेल से संबंधित नहीं है, उसमें संस्कृति और शिल्प जो स्कल्पचर्स है उससे रिलेटेड भी आप कैसे उसके अपने जीवन में उसको उधार सकते हैं, कैसे एक दूसरे को उसे एजुकेट कर सकते हैं, उसके बारे में भी काफी कुछ बताया गया है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो कि सबसे ज्यादा प्रचलित है, वो आपको सभी लोग उससे उसको जानते हैं, सबको उसके बारे में पता है कि किस प्रकार स्पोर्ट्स एंड गेम्स आज के समय में 204 देश पिछले ओलंपिक गेम्स में खेल चुके हैं, जो कि इस बात का संकेत है कि खेल एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम मानवता का विकास कर सके हैं, मानवता को जोड़ सकते हैं। और राजयोग जो कि योग में सबसे बड़ा राजयोग कहा गया है, उसका हमें सिर्फ यहीं तक नहीं, आपस में जोड़ के इतना है विकास करना है, इतना आपस में एक दूसरे को जोड़ देना है ताकि हम राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो एक गठबंधन है उसका प्रयोग मानवता के विकास के लिए करें, खिलाड़ियों के विकास के लिए करें। सिर्फ खेल के पक्ष तक ही इसको प्लेस ना रखें बल्कि मानवता के लिए इसका प्रयोग किया जाए। और अब यदि हम जिक्र करें कि ह्यूमैनिज्म, जिसके बारे में आपको मैं जिक्र कर रहा हूं कि भी ओलंपिज्म भी उसके लिए काम कर रहा है, राजयोग भी उसके लिए काम कर रहा है, ह्यूमैनिज्म का बेस क्या है? ह्यूमैनिज्म का बेस है रिस्पेक्ट एंड एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स, ड्यूटीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल बींग एन ह्यूमन बींग। ये सिर्फ बात इंसानों के लिए नहीं है, सभी के लिए है, जानवरों के लिए भी है, प्रकृति के लिए भी है कि हमें उनके लिए उनके प्रति रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए और उनके खुशी में खुश भी होना चाहिए और जो उनके राइट्स हैं, जो हमारे राइट्स हैं, हमारी जो ड्यूटीज हैं और जो हमें प्रिविलेजेस मिली हुई हैं उन सब का हम पालन करें, तभी हम एक मानवता का निर्माण कर सकते हैं। अब बात ये उठती है कि ओलंपिज्म और राजयोगा सिर्फ कहने से नहीं, वे किस तरीके से आपस में एक दूसरे से संबंधित है। पहली बात तो यही है कि दोनों की दोनों फिलॉसफियां ह्यूमैनिटी के विकास के लिए कार्य कर रही हैं, दोनों की दोनों फिलॉसफियां शांति जो कि मानसिक आंतरिक शांति और बाहरी शांति दोनों के लिए दोनों पर असर है, और दोनों का जो सब्जेक्ट है जिस पर काम कर रही है, जो मेजर सब्जेक्ट है वो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। और अगला जो विषय है कि ये पूरे विश्व के विकास के लिए काम कर रही हैं और जो इसका एरिया है वो सिर्फ भारतवर्ष नहीं कि संपूर्ण संसार है, और जो इसका मेजर एस्पेक्ट है जिसके थ्रू ये अपनी जो अपना ज्ञान फैला रही है वो एजुकेशन है। तो इस तरीके से ओलंपिज्म और राजयोग का जो गहरा गठजोड़ है, सिर्फ जो फर्क है वो सिर्फ विधि में है कि विधि क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, बट विधि का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है क्योंकि दोनों विधियां जुड़ेंगी तभी संपूर्ण विकास होगा। और जिस चीज की जरूरत है, जिसके लिए हम आज ओलंपिज्म और राजयोग के हम प्रतिनिधि यहां पर बैठे हैं, वो इसीलिए बैठे हैं कि जो इसके बीच में जो फिशर है, जो एक गैप है, उसको हमें खत्म करना है, क्योंकि खिलाड़ी का विकास जब तक नहीं होगा जब तक वो मानसिक विकास नहीं करेगा। और जिसमें राजयोग का जो कंट्रीब्यूशन है वो आप सभी लोग दो दिन से हम लोग समझ रहे हैं और उसको अपने अंदर धारण करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ओलंपिज्म और राजयोग जो दोनों फिलॉसफीज हैं वो किस तरीके से आपस में काम कर रही हैं, इसको उसका छोटा सा एक एग्जांपल आपके सामने है कि विद इन दैट सेल्फ, जो सेल्फ डिसिप्लिन है, जो सोल की प्योरिटी है, जो माइंड की है, जो बॉडी है, वो आपको थ्रू राजयोगा मिल रहा है और थ्रू ओलंपिज्म भी मिल रहा है, ओलंपिक गेम्स के थ्रू भी मिल रहा है, खेलने से भी मिल रहा है, बट उसका जो ज्यादा हिस्सा है वो हमें राजयोगा करने से प्राप्त होगा। लेकिन जो अदर एस्पेक्ट्स हैं जैसे कि टू एक्सेल, टू कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स, करेज, वो हिस्से ओलंपिज्म स्पिरिट से हमें या उसकी जो भावनाएं हैं, जो उसका जो वैल्यूज है उससे प्राप्त होंगी। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की बात करें तो जो आंतरिक और बाहरी पर्सनैलिटी है, आंतरिक तौर से जब हमारी पर्सनैलिटी जब ही अच्छी तरीके से डेवलप हो सकती है जब हम मानसिक रूप से स्ट्रांग होंगे, और एक्सटर्नल पर्सनैलिटी जब डेवलप होगी जब हम खेलों में या खेलकूद प्रतियोगिता में या योगाभ्यास में भाग लेंगे तो हमारा शरीर भी प्रफुल्लित नजर आएगा, लोग देख के पहचान लेंगे ये एक वास्तव में एक मानव है। लेकिन राजयोग और ओलंपिज्म का दोनों का जब आपस में संपूर्ण कोलेबरेशन होगा, विकास होगा, तो एक कंप्लीट मानव डेवलप होगा जो कि मानसिक तौर से भी संतुलित होगा और शारीरिक तौर से भी संतुलित होगा। लेकिन यहां हमारा उद्देश्य संसार का विकास करना है, दोनों को साथ चलना है, लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा जिसका प्रभाव पड़ने वाला है वो संसार के पर पड़ने वाला है, समाज के पर पड़ने वाला है, जिसका विकास दोनों के जब दोनों में एक दूसरे पर निर्भरता हो जाएगी, एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे को यूज करेंगे, तो समाज में कोहेजन, सिंपैथी, जस्टिस और इक्वलिटी और बहुत सारी मानवताओं के गुणों का विकास होगा। अब क्योंकि आप सब भी हमारे देश में हर संस्थान में, हर समाज में, हर मोहल्ले में, और जो खिलाड़ी लोग हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजदूत हैं, हम यहां पर आपके सामने ओलंपिज्म के राजदूत हैं, राजयोगा के सिविलिटेड सब जो हमारे भाई बहन हैं वो राजयोगा के राजदूत हैं। हमें करना क्या है, हमें स्पोर्ट्स और जो सामाजिक गतिविधियां हैं उनको ऑर्गेनाइज करें, चाहे वो जरूरी नहीं है कि भी ऑर्गेनाइज हो या इसके लिए कोई फेडरेशन की जरूरत है, क्योंकि हम नॉन ऑर्गेनाइज लोकल लेवल पे उसको कर सकते हैं, राजयोगा मेडिटेशन कैंप्स लग सकते हैं, योगा एक्टिविटीज चला सकते हैं, ड्राइंग कॉम्पिटिशन कर सकते हैं छोटे बच्चों के लिए जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनके लिए भी, उस पर ओलंपिज्म और राजयोगा का आपस में क्या संबंध है या उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है उसके बारे में जिक्र कर सकते हैं, ओलंपिक्स वैल्यूज के ऊपर ओलंपिक डेज, ओलंपिक वीक्स, राजयोगा वीक्स सेलिब्रेट कर सकते हैं, और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और जो राजयोगा के एक्सपर्ट्स हैं इनको हम किसी भी कॉन्फ्रेंसेज में दोनों को इकट्ठे बैठा के उनके जो एक्सपीरियंसेस उनको शेयर कर सकते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस में कहां फिशर्स है, कहां गैप है और कहां उसको दूर करने की जरूरत है और कहां उनके आपस में मेल हो रहा है उसका जिक्र कर सकते हैं, जो कि हमारे बच्चों के भी बहुत लाभदायक होगा, पेरेंट्स के लिए भी लाभदायक होगा। अगली बात यह है कि भी हम जिस स्थिति में हैं आजकल, हम तकरीबन 40 साल के हैं, साथी 45-50 साल के हैं, कई बार हम ऐसी चीजें अपने बच्चों से सीखते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है यदि हम इसको दोनों में जो समीकरण है इसको विकास करना चाहते हैं तो हम आने वाले भविष्य में अपने बच्चों को भी इसके साथ में इन्वॉल्व करें, क्योंकि वो बच्चे हमारे भविष्य हैं, वो इस चीज को ज्यादा बेस्ट तरीके से ट्रेन कर सकते हैं और हमें जो बताएंगे वो उसका इम्पैक्ट हमारे पे और भी ज्यादा पड़ेगा। इसके साथ स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन कर सकते हैं ओलंपिक वैल्यूज पर, सोशल एक्टिविटीज चला सकते हैं राजयोगा के पर भी और ओलंपिक्स के पर भी। लेकिन सबसे अंतिम में मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि हमें ये जो प्लेटफॉर्म आज मिला है स्टार्ट करने का, ये बहुत बहुत आभारी हम इसके लिए। हमें यहां से आपस में कोलेबरेशन स्टार्ट करना है और इस कोलेबरेशन को एक या दो कॉन्फ्रेंसेस तक नहीं करके ओलंपिक्स तक लेके जाना है और ओलंपिक से पदक प्राप्त करने और मानवता का विकास करना है और ओलंपिज्म और राजयोगा के थ्रू मानवता का विकास करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके साथ ही मैं अपने सहभागियों से को भी निमंत्रण देता हूं कि वो इस चर्चा में हिस्सा लें और हमारी बहन को आगे विनती करता हूं कि आगे वो अपने कार्यक्रम को चलाएं।
ओम शांति। सबसे पहले हम बहुत बहुत आभारी हैं डॉक्टर राकेश मलिक के, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट, सरल और सहज शब्दों में हमें बताया कि कैसे हम राजयोगा इन ओलंपिक्स के माध्यम से, दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छी सेवाएं कर सकते हैं, मानव का विकास कर सकते हैं। अभी मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी, यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं या आपका कोई भी ओपिनियन है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो हम अपने नेक्स्ट पैनल स्पीकर को माइक हैंड ओवर करेंगे। कोई भी प्रश्न? पाजी माइक प्लीज। कोई प्रश्न नहीं है तो हम पूछ लेते हैं। अभी उन्होंने जॉय ऑफ एफर्ट के बारे में बोला, तो आप राजयोगा मेडिटेशन को कैसे कंबाइन करते हैं, क्योंकि दो दिन से आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो कैसा अनुभव है आपका? जॉय ऑफ एफर्ट, जॉय ऑफ एफर्ट क्या, कैसे उसको रिलेट करेंगे राजयोगा मेडिटेशन से? माइक देंगे प्लीज। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, कोई भी भाषा चलेगी। आपका नाम जान सकते हैं सर? मैंने प्रेजेंटेशन से पहले ही अनाउंस किया था कि अब आपकी बारी है।
कुलदीप सिंह, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पूना से। मैम क्वेश्चन प्लीज।
अभी जो प्रेजेंटेशन हुआ दैट इज राजयोगा इन ओलंपिज्म, तो हमारा जो टॉपिक राकेश मलिक जी ने उठाया वो है जॉय ऑफ एफर्ट। राजयोगा मेडिटेशन के थ्रू आप जॉय ऑफ एफर्ट को कैसे अप्लाई करेंगे, अपने शब्दों में अपनी समझ से आप बताइएगा।
डाइविंग टीम के साथ हूं मैं पूना में, तो उसमें कंसंट्रेशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, तो जो इधर सीखा मेडिटेशन में या मोटिवेशन उन सभी को उनके ऊपर लागू करके और आगे लेके जाऊंगा टीम को।
जी, तो अभी आप राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास धीरे धीरे करना शुरू कर दिया आपने?
हाँ, मेरा सेकंड सेशन है, मैं करता पहले भी करा रहा था बच्चों को।
जी,
तो अभी जाके फिर द्वारा जो भी सीखा है द्वारा शेयर कराऊंगा उनको।
जी, थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी बात होती है कि माइक लेना, आगे आना और अपने आप को एक्सप्रेस करना, तो हमें ये अपनी झिझक भी खत्म करनी है, इन सब चीजों से भी ऊपर उठना है, एंड दैट इज योर रियल जॉय ऑफ एफर्ट। किसी और का कोई प्रश्न, कोई कुछ कहना चाहेगा? यस,
मेरा प्रश्न तो नहीं है, मेरा एक सजेशन है प्लीज।
जी,
जैसे मैं खुद, मेरा नाम दीपक सिंह है, मैं आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट से हूं, मैं फेंसिंग कोच हूं, और मैं चाहता हूं जैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग ओलंपिक के ऊपर और राजयोग के साथ मिलके, पर मैं चाहता हूं कि जैसे हमारे बीच में मैडम है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जैसे इनके पास स्कीम्स हैं, हमारे पास स्कीम्स हैं बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी की या एसटीसी की, तो हम लोग छोटे लेवल से अगर ये काम शुरू करें तो हम ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, जबकि हम लोग बड़े जो एक्सपीरियंस होल्डर प्लेयर्स हैं उनको अगर मेडिटेशन करा रहे हैं तो रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, पर अगर हम आगे का फ्यूचर देख के चलें या 2016-2020 ओलंपिक्स को लेकर चलें, तो हम छोटे बच्चों से अगर ये स्टार्ट करेंगे राजयोग का मेडिटेशन का जो सिस्टम है, तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा।
जी, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया, थैंक यू सो मच। अभी मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि ऑलरेडी हमारी मैडम से बात हो चुकी है, अमर ज्योति जी से, और काफी हमारे एज ग्रुप्स के लिए, डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए इस तरह के प्रोग्राम डिजाइन किए जा रहे हैं और ऑलरेडी किए जा चुके हैं, और हमारे ऐसे रेगुलर कॉन्फ्रेंसेज जगह जगह में देश देश के कोने में होने वाली हैं, और इसके लिए कई पॉलिसी फ्रेमवर्क जो हैं हम मल्टी स्टेक होल्डर्स के साथ बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमने इस सेशन को रखा है, सो इट इज ऑलरेडी अंडर प्रोसेस। थैंक यू सर। अभी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राम निवास यादव जी को, जो जिनका स्पेशलाइजेशन है एथलेटिक्स में, एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स चंडीगढ़। ओवर टू यू।
ओम शांति। प्लेटो ने ऐसे कोट किया है कि जिम्नास्टिक फॉर द बॉडी एंड म्यूजिक फॉर द सोल। यहां आके हालांकि मैं प्लेटो की कोट को चेंज नहीं करना चाहता, लेकिन जिम्नास्टिक फॉर द बॉडी एंड राजयोगा फॉर द सोल।
वंडरफुल, वंडरफुल।
एंड आगे जो प्लेटो ने फिर बोला है, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। राजयोगा साउंड माइंड के बारे में जितना बेटर डेवलप कर सकता है उतना स्पोर्ट्स डेवलप नहीं कर सकता है। आज से 3500 ईयर पहले जो माइलस्टोन्स लगे होते हैं, किलोमीटर्स के स्टोन्स लगे होते हैं कि आबू रोड 20 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 19 किलोमीटर, तो जो एंशियंट ओलंपिया है वहां पर रोड पे जो मील के पत्थर लगे हुए थे उन पर लिखा हुआ था, इफ यू वॉन्ट टू बी हैंडसम रन, इफ यू वॉन्ट टू बी वॉइस रन, इफ यू वॉन्ट टू बी स्ट्रांग रन। ये 3500 ईयर पहले लिखा गया है, इसको मैं फिर थोड़ा चेंज करना चाहूंगा, इफ यू वॉन्ट टू बी हैंडसम राजयोगा, इफ यू वॉन्ट टू बी स्ट्रांग राजयोगा, इफ यू वॉन्ट टू बी वाइजर राजयोगा।
फैंटास्टिक।
जो ओलंपिक्स हैं इसमें पांच रिंग्स हैं, जो पांच रिंग पांच महाद्वीपों का प्रतीक हैं, कि ये पांच कंटिनेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं। उसमें पांच कलर हैं, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड। अगर आप मेरे पीछे स्क्रीन को देखेंगे बाबा जी के साथ में, तो ये पांचों कलर उसके अंदर विद्यमान है। ये पांचों कलर आपको पीछे दिखाई देंगे, जिसमें रेड कलर टॉप के ऊपर है। तो जो ओलंपिक के पांचों रिंग हैं, वो हमारे पीछे विदाउट रिंग यूनाइटेड फॉर्म में हमें दिखाई दे रहे हैं। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है। जो ओलंपिक के फादर हैं बैरन पेरी द क्यूबर्टिन, उनकी जो लास्ट विश थी, उन्होंने कहा कि मेरी बॉडी को कहीं भी क्रीमेट करो, लेकिन जो मेरा हार्ट है, जो मेरा दिल है, उसको ओलंपिया के अंदर दफन करना है, क्योंकि उसकी सोल, उसकी आत्मा वो ओलंपिक से जुड़ी हुई थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है कि फिजिकल बॉडी के साथ में जब तक आप अपनी आत्मा को, अपनी सोल को इस स्पोर्ट्स में नहीं झोंकोगे, परफॉर्मेंस नहीं आएगी, अच्छे ह्यूमन बीइंग में डेवलप नहीं होगे। ऐसे ही जो ओलंपिक का मोटो है वो है CTS LTS FORTIS, जिसका मतलब है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। फिर मैं दोबारा अपने पीछे जाऊंगा बाबा जी के ऊपर। सबसे टॉप पे जो बिंदु है, दिस इज वी कैन इंटरप्रेट द हाइएस्ट प्लेस, द ओलंपिक मोटो। इसी तरह से जो पूरे ओलंपिक की हिस्ट्री है वो नंबर ऑफ स्टेसिस से भरी हुई है, जहां खिलाड़ियों ने बलिदान दिए हैं, और कुछ जगह ऐसे रिकॉर्ड भी हैं जहां पर ह्यूमैनिटी का वायलेंस भी हुआ है। मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में इसराइल के 18 प्लेयर्स का मर्डर कर दिया गया था, क्योंकि वो यहूदी थे। तो एक दो इंस्टेंसिस को छोड़कर जो पूरे ओलंपिक की हिस्ट्री है वो ह्यूमैनिटी से भरी हुई है। एक ओलंपिक्स में लॉन्ग जंप इवेंट के अंदर जो प्लेयर था उसका टेक ऑफ के ऊपर पैर नहीं आ रहा था, तो उसको किस प्लेयर ने गाइड किया? जो प्लेयर लीड कर रहा था, जो प्लेयर फर्स्ट चल रहा था, जिस प्लेयर को उसने गाइड किया वो फाइनल एट्स में था, लेकिन किसी पोजीशन में नहीं था। उसने उसको बोला कि आप अपना टेक ऑफ बोर्ड चेंज करो, अपना टेक ऑफ बोर्ड में थोड़ा एडजस्टमेंट करो। मिकी ओडा जापान के, दिस इज द ओनली गोल्ड मेडल फॉर द जापान इन लॉन्ग जंप, वो उसके अपोनेंट ने गाइड किया। इस तरह की कैरेक्टर बिल्डिंग, स्वार्थलेस, सेल्फलेस, अबव इंडिविजुअल इंटरेस्ट, वो हम राजयोग में सीख सकते हैं। और यहां की आबो हवा में मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे मैं ओलंपिया में घूम रहा हूं।
Wonderful, wonderful.
आप सभी को देख के लगता है कि अलग अलग स्टेट से ना आके अलग अलग देशों से ओलंपिक्स गेम्स खेलने आए हुए हो। यहां पर सब कुछ स्वतः घटित हो रहा है। मैं देखता हूं कहीं से कुछ भी पूछो, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते हैं। कोई कल किसी ऑथर का नाम लिया गया तो मुझे वो HAI या HAY नहीं मुझे सुना, तो मैंने वैसे ही पूछा क्या प्रोनाउंस हुआ है, तो मेरे आगे जो भाई थे उन्होंने लिख के डायरी पे दिया, जबकि चंडीगढ़ में ऐसी प्रथा बिल्कुल नहीं है। एक जो फेयर प्ले का आजकल कॉन्सेप्ट है, मैं दो बातों में ब्रीफ करूंगा, क्योंकि ओलंपिक इज फुल ऑफ लव एंड लॉट ऑफ, क्योंकि जो वर्ल्ड की हिस्ट्री है वो ओलंपिक की हिस्ट्री है। हिस्ट्री का मतलब रिकॉर्डेड, रिटन रिकॉर्डेड रिकॉर्ड। 776 BC से एक एक इंडिविजुअल्स के लिखे गए रिकॉर्ड हैं। एरिस्टोटल, प्लेटो, पाइथागोरस, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये सब ओलंपिक मेडलिस्ट है। राजयोग के माध्यम से एक तो मैं पेरेंट्स को यह मैसेज देना चाहूंगा कि जब आपके खुद के बच्चे खेल रहे हैं तो आप प्लीज पैनिक मत होइए। ये टेक्निक आपने राजयोग से सीखनी है। मेरी भी बेटी टेनिस खेलती है, जब उसके मैच होते हैं तो मैं पूछता हूं कि बेटा मैं कोर्ट में बैठूं या चले जाऊं, वो कहती पापा प्लीज आप चले जाओ क्योंकि आप डिस्टर्ब करोगे यहां बैठ के, कि ये वाला शॉट क्यों नहीं मारा, ड्रॉप क्यों नहीं मारा, फर्स्ट सर्विस इन क्यों नहीं रखी, बेस द लाइन क्यों नहीं हिट किया। तो मेरा, मैंने जो वहां पर सीखा है, अगर आपका बच्चा आपके बैठने से वहां पे प्रेशर में है, आप वहां मत बैठिए। आप उसको मोटिवेट करिए, जब भी हार के आता है उसको बोलिए यू प्लेड वेल। जो ओलंपिक की स्पिरिट है वो कहती है कि द इंपॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक इज नॉट टू विन बट टू टेक पार्ट। एंड द एसेंशियल थिंग इन द लाइफ इज नॉट टू विन बट टू फाइट वेल। तो राजयोगा हमें सिखाता है कि हमने विन नहीं करना है, हमने फाइट करनी है। अगर आपने आपका बेस्ट दिया है तो दिस इज योर बेस्ट। एवरीवन इज चैंपियन इन एवरी सेंस एंड चैंपियन कम्स इन ऑल शेप एंड साइजेस। लास्ट जो मुझे जो करंट प्रॉब्लम है वो है डोपिंग की, ड्रग्स की। जो मैंने देखा है कुछ एक गेम में तो ड्रग्स इतना प्रोमिनेंट हो गया है कि प्लेयर्स वो सोचते हैं कि विदाउट सप्लीमेंट, विदाउट एनर्जी ड्रिंक, विदाउट नॉन वेज परफॉर्मेंस नहीं आएगी। कोई क्रिएटिन खा रहा है, कोई डोपामिन ले रहा है। अभी मैं थोड़ा सा छोटा एग्जांपल शेयर करूंगा। हम ऑल इंडिया इंटरस्टी के लिए गए थे मूडबिदरी मैंगलोर में, तो रात के टाइम पे एक प्लेयर चिल्ला रहा 1:30 बजे रात को। तो हमने पूछा भाई क्या प्रॉब्लम हुई, तो बताया गया कि सर डोज हैवी लग गई मेडिसिन का, स्टेरॉइड का, तो वो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो उस टाइम तो शूट किया नहीं, वो क्लिक नहीं किया, तो उसको लगा परफॉर्मेंस आएगी नहीं। देन आई आस्क्ड क्या यूज किया आपने, व्हाट ड्रग्स यू यूज्ड, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो। उसने मेफ्टीन यूज किया, मेफ्टीन। जब डिलीवरी लेडीज की होनी होती है उस टाइम पे ये इंजेक्शन दिया जाता है मेफ्टीन, ताकि वो जो प्रेग्नेंट बहन है वो बॉडी को इतना पुश कर सके कि बच्चे की कंफर्टेबल डिलीवरी हो सके। इस तरह की मेडिसिन उस बच्चे ने डबल इंजेक्शन लगाया। मैंने बोला कब रिकवरी होगी, कहता सर 15 डेज मेफ्टीन। तो मेरा सबको एडवाइस है कि जो आपका वाडा है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उसका मोटो है प्ले फेयर। राजयोग हमें भलीभांति सिखाता है कि प्ले फेयर, गेम भी नहीं लाइफ में भी, लाइफ भी गेम है, लाइफ भी ड्रामा है, उसमें फेयर रहिए, उसमें आप खुश रहेंगे। थैंक यू फॉर माय साइड।
थैंक यू सो मच रामनिवास यादव जी। आपके लिए मैं एक ही लाइन में बोलूंगी, तुसी चक दे फट्टे। बहुत ही ह्यूमरस तरीके से, बहुत ही मजेदार तरीके से आपने हमें परिचय कराया अपना फेयर प्ले से। और ये कोई मजेदार बात तो थी लेकिन बहुत ही गंभीर बात भी थी। और मुझे लगता है कि राजयोगा मेडिटेशन को आपने बाखूबी समझा है इन 2 दिनों में। और जिस तरह से आपने बाबा जी का एग्जाम्पल दिया, ओलंपिक्स को उससे जोड़ा, इससे साबित होता है कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान आपको बहुत अच्छी रीति से क्लियर हो गया है। कितने लोग हैं जिन्होंने सेशन 1 सेशन 2 अटेंड किया है, प्लीज हाथ उठाएं। राजयोगा शिविर 1, राजयोगा शिविर 2, रेज योर हैंड्स प्लीज। बाकी ने नहीं किया, ओके। अभी आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस प्लीज।
मेरा नाम प्रदीप है और मैं बैडमिंटन प्लेयर हूं। सर ने कहा कि कंपटीशन में लोग नॉनवेज खाते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो आई एम ए प्योर वेजिटेरियन, ना मैं एग लेता हूं ना और कुछ। तो मुझे कई बार ऐसा फील होता है कि जिस अकेडमी में जाता हूं वहां के कोचिज और साथी प्लेयर जो इंटरनेशनल खेलते हैं वो इतना फोर्स करते हैं कि बोलते हैं कि विदाउट नॉनवेज इट्स नॉट पॉसिबल, सप्लीमेंट्स थोड़े बहुत एमवे के आते हैं वेजिटेरियन, बट वो कहते हैं कि मीट के बिना वो हाई लेवल की एनर्जी वो लेवल आ ही नहीं पाएगा। तो उस सलाह के बाद कई बार मन में कन्फ्यूजन उठता है कि मैं राजयोगा करना चाहता हूं तो मुझे वेजिटेरियन रहना पड़ेगा, और मुझे वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्म करना है तो मीट खाना पड़ेगा। तो इस पे हमेशा डाउट बना रहता है।
वेरी गुड क्वेश्चन।
शेर मांस खाता है और हाथी घास खाता है। अगर शक्ति की तुलना करेंगे तो मेरे ख्याल से जो स्ट्रेंथ हाथी के अंदर है वो शेर में नहीं है। सुशील कुमार आपके सामने एक एग्जाम्पल है जिसने कभी नॉनवेज यूज नहीं किया, और प्रोटीन को अगर आप कंपेयर करते हो उसको 2 तरह से डिवाइड करते हैं कि ये डेयरी प्रोडक्ट है या नॉन डेयरी प्रोडक्ट है, वेज से आया है नॉन वेज से आया है, फिश से आया है ये प्रोटीन या ये सोयाबीन से आया है। जब हम प्रोटीन को फर्दर उसको केमिकली डिवाइड करते हैं तो कंपोजिशन दोनों का सेम है। अब वो आपका मेंटल वो लेवल है कि भाई यहीं से स्ट्रेंथ आएगी, कहां से स्ट्रेंथ आएगी। तो मैं तो हाथी की तरफ हूं, चॉइस इज योर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप अपना मेडिटेशन बढ़ाओ, उस टेक्निक से आपका वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा।
मैं एक स्पोर्ट्स पेरेंट हूं और योगा टीचर भी हूं, एक्स सर्विसमैन हूं। मैं सर से ये सलाह लेना चाहता था, क्या नाडा और वाडा में कोई ऐसे सप्लीमेंट को वो सर्टिफाई करते हैं, जैसे आपने कहा कि भाई ये वेज का है या नॉन वेज का है, तो ये चीज अगर क्लियर हो जाए तो शायद सभी को मदद करेगी।
नाडा की जो नाडा रेगुलरली पूरे ऑल ओवर इंडिया स्पोर्ट्समैन के लिए क्लिनिक ऑर्गेनाइज करता है, बाकायदा जो भी प्लेयर्स हैं उनको हैंड आउट डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो बताता है कि कौन से बैंड सब्सटेंसेज हैं, कौन से बैंड सब्सटेंसेज नहीं है। सिंपली जो आपका ग्लाइकोडीन है, कॉरेक्स है, जो कि ये खांसी और कोल्ड की मेडिसिन हैं, ये भी नार्कोटिक एनर्जेसिक की कैटेगरी में आते हैं। तो उसमें कुछ एक सब्सटेंसेज की परमिशन है, आप डॉक्टर की परमिशन से कुछ एक लिमिटेड सब्सटेंस आप ले सकते हैं, उसमें उनकी रेंज है। अगर आप वो रेंज क्रॉस करते हैं, उसमें कुछ एर्गोजेनिक एड्स हैं, कुछ बैंड सब्सटेंस हैं। जो बैंड सब्सटेंस है लाइक एनाबोलिक स्टेरॉइड, स्टिमुलेंट्स, डायरकेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, ये कंप्लीटली बैंड सब्सटेंसेज हैं। ये इस कैटेगरी में अगर आप कुछ भी लोगे, अगर आपके सैंपल में आता है, सैंपल ए बी पॉजिटिव प्रूव होता है, तो यू आर लाइबल फॉर द पनिशमेंट। जो एर्गोजेनिक एड्स हैं उनकी लिमिटेड एड आपको परमिटेड है, वो बकायदा उनकी लिस्ट दी हुई है, हर साल लिस्ट रिवाइज होती है, क्योंकि बाजार में जैसे ही कोई एक सब्सटेंस बैन होता है, जो कंपनियां हैं वो नाम चेंज करके दूसरे नाम से निकाल देती हैं, स्टेरॉइड विल बी स्टेरॉइड्स। तो आप जो इसकी नाडा की उस पर जाइए, आप साइट पे, वेबसाइट पे आपको सारा लिटरेचर वहां पे अवेलेबल है, लिस्ट अवेलेबल है, कौन सा आपको अलाउड है, कौन सा नोट अलाउड नहीं है।
ये बात सही है आपकी, आपने जो कहा, लेकिन फिर वही क्वेश्चन आता है कि जैसे मेडिकल टर्म में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए तो सर्टिफाई कर दिया, और वैसे स्ट्रेंथ के लिए या पावर एनहांसिंग के लिए जो आप कह रहे हो सब्सटेंस यूज होगा, तो उसमें तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो सर्टिफाई करते हो या डॉक्टर बताते हो, अपने कोच बताते हो, फिटनेस एडवाइजर कहते हो इस चीज को।
हर एक ड्रग्स की बॉडी में रेंज फिक्स कर रखी है मेडिकली, कि अगर ये रेंज उससे ऊपर जाती है तो वो नॉट बाय सप्लीमेंट बट आपने केमिकली और आर्टिफिशियली इंप्रूव किया है, राइट? जैसे टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, ये दिस इज अ मेल हार्मोन। अगर ये फीमेल्स की बॉडी में बियॉन्ड रेंज मिलता है तो क्योंकि उसमें जनरेट नहीं होता, उसमें बनता बहुत मिनिमम है, और मेल हार्मोन है उसमें उसका जो लेवल है उससे एक्सीड करता है, तो मींस आर्टिफिशियली या सिंथेटिकली लिया गया है, तो उनमें उसकी रेंज फिक्स कर रखी है, आप उस रेंज में फॉल मत करिए। लेकिन जो बैंड सब्सटेंस है उसको मैं बिल्कुल कहूंगा उसकी तरफ मत जाइए, क्योंकि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी तरह का फूड अवेलेबल है, तो उस सब्सटेंस की तरफ जाने की जरूरत नहीं है।
थैंक यू सर, उम्मीद है कि बाकी सभी प्लेयर्स को और पेरेंट्स को ये चीजें काम आए और आगे बढ़ेंगे इन्हीं चीजों के साथ। धन्यवाद।
गुड इवनिंग, ओम शांति। आई विल अपडेट यू अबाउट नाडा एंड वाडा। व्हाट इज वाडा? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, हेडक्वार्टर इन कैनेडा, व्हिच इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द एथलीट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड so that they cannot be involved in such illegal substances which are prohibited according to charter. NADA. NADA is a national wing which is in each and every country. They are trying to establish this part in each and every country. NADA is a national form which is called National Anti-Doping Agency. And when we are talking about illegal substances, a list of illegal substances is mentioned on website. This is not 1, 2, 3, 5. ये बहुत सारे हैं। थैंक यू।
थैंक यू सो मच जी।
मेरा नाम तुलसी दुरेजा है, मैं दिल्ली से हूं और खेलों से 50 साल से जुड़ा हूं। तो प्रदीप भाई ने अभी वेजिटेरियन के बारे में पूछा, तो मैं उनका भी ये समाधान कर दूं कि मैं 13 साल तक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेला हूं और मैं खुद वेजिटेरियन हूं। मुझे भी मेरे साथियों ने बहुत मजबूर करा कि आप नॉन वेज खाएं, इवन मेरे मुंह के अंदर डाल दिया गया लेकिन मैं उसको नहीं खा सका। मेरी एक विल पावर थी, एक मेरे में डिटर्मिनेशन थी और मैं खेलता रहा। और जहां तक वेजिटेरियन फूड के बारे में, आजकल इतने तरह के खाने हैं वेजिटेरियंस जो आपकी शक्ति को बढ़ा सकते हैं, आपके मानसिक संतुलन को ठीक रखते हैं। और नॉन वेज में तो आपको कुछ चीजें मिलेंगी और उनके सबके साइड इफेक्ट्स भी हैं। और मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि जब वर्ल्ड कप क्रिकेट का हो रहा था, कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स ने रिमार्क्स करे कि ये घास फूस खाने वाले हमें कहां से हराएंगे, इनमें जज्बा कहां से आएगा, ये लोग तो नॉनवेज खाते नहीं है। और उसी पाकिस्तानी टीम के बारे में आप सब जानते होंगे कि वर्ल्ड कप में हमें वो कभी भी हरा नहीं पाए और वो सब नॉनवेज खाने वाले हैं। और हमारी क्रिकेट टीम में हमारे वीरेंद्र सहवाग, जिनकी मां उनको दूध और खीर से ही उन्होंने इंटरनेशनल प्लेयर बना दिया, हमारे क्रिकेट कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी बताते हैं कि 2.5 किलो दूध एक टाइम में पिया करते थे। तो ये वेजिटेरियन लोगों का भी इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो आप अपने आप को बिल्कुल भी कंफ्यूज ना समझें, वेजिटेरियन फूड आपको हेल्प करेगा इंटरनेशनल प्लेयर बनने में, राजयोग उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको। धन्यवाद।
ओम शांति। मायसेल्फ मीनू गल्होत्रा, मैं लुधियाना से हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। तो मैं अपने बेटे को लेके आई हूँ, नेशनल लेवल शूटर है। तो मैं पिछले कुछ सात आठ साल से मैं भी राज योगा करती हूँ, मेडिटेशन प्रॉपर करती हूँ, सेंटर जाती हूँ। तो उससे शायद बहुत पहले मैं भी नॉन वेजिटेरियन थी, पर जब से मुझे एक बाबा का ज्ञान मिला उससे पहले मैंने नॉन वेज छोड़ दिया था। पर अब मुझे घर पर क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ ऑनियन गार्लिक भी घर पर, और हमारे घर में दो सब्जियां बनती है विदाउट ऑनियन गार्लिक और दूसरी। पर मुझे प्रॉब्लम आती है बच्चे को लेकर के, क्योंकि वो बहुत मतलब फूडी हैं, खाती हैं नॉनवेज, और कहती है कि मैं बिल्कुल पिछले काफी सालों से नहीं बना रही हूं, पर स्टिल वो इंसिस्ट भी होता है घर में। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, बच्चों को कैसे समझाना चाहिए? मतलब सभी ने बड़े अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं, रादर आज जो इससे पहले जो आज सेशन प्लान था वो था न्यूट्रिशन का, तो मुझे था कि शायद भाई कुछ उसमें बताएंगे, पर इसमें बच्चों को भी एक पूरी तरह से एक्सप्लेन होना चाहिए कि कौन सा फूड बेटर है, क्योंकि शूटिंग तो मुझे पता है कि मेंटल गेम है, इसके लिए नहीं वो फिट है, बट कुछ
सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप यहाँ आए।
रादर शायद मुझे डांट पड़े कि आपने अभी क्यों बोला।
सबसे पहले हम अपने नेशनल प्लेयर का स्वागत करेंगे। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ।
ओम शांति।
ओम शांति। व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट इज योर
तनिष गल्होत्रा। तनिष गल्होत्रा। आई एम अ नेशनल लेवल शूटर।
ओके, तो नॉन वेज खाना है या छोड़ना है?
छोड़ दिया।
ये आज पक्का करके जाएगा कि मैंने नॉनवेज नहीं खाना, चाहे मुझे डांट पड़े इसके लिए घर
में। जी, अभी हम लोग इसका आंसर भी ले लेते हैं सर।
अभी जो जम्मू कश्मीर है, इसमें जो कश्मीर रीजन है, इसमें मैक्सिमम इंटेस्टाइनल कैंसर और रेक्टल कैंसर के केसेस आ रहे हैं। तो जो केसेस आए उसकी स्टडी की गई तो पाया गया कि जो कीमे की जो कीमा है उसकी मैक्सिमम जो कंजम्पशन है पूरे इंडिया में वो कश्मीर में उस एरिया के अंदर है। और ये एक एग्जांपल है, स्टडी बेस अभी ट्रिब्यून में पब्लिश हुआ है, इसको डाइजेस्ट करने में ट्रबल है। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि क्या खाया जाए, आपकी पर डे कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है 3000 कैलोरीज, 4000 कैलोरीज, आपकी चॉइस है। वो 4000 कैलोरीज आपने कहां से लेनी है, वेज से या नॉन वेज से? आप बोल रहे कि मैंने वर्कआउट किया, 6 घंटे वर्कआउट किया, 4 घंटे वर्कआउट किया, आपकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। आप उस कैलोरीज को, 4000 कैलोरीज को आपकी मर्जी है, डॉलर्स में लेना है, रुपीस में लेना है, ये आपकी च्वाइस है।
डाइट के साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको और बात बताना चाहता हूं। यदि आप स्पोर्ट्स एंथ्रोपोमेट्री के बारे में थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं या उसको पढ़ते हैं, तो उसमें एक खास बात बताई गई है कि भाई आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर जो पाए जाने वाले डिजीजेज हैं वो भी खास ही होंगे, मतलब आपको उस पर्टिकुलर टाइप के एरिया में उसी टाइप की पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम होती है, डिजीज होते हैं। इसीलिए आप क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड में बहुत वैरायटी अवेलेबल है, मतलब इतनी ज्यादा वैरायटी अवेलेबल है और भारत में तो इतनी ज्यादा क्योंकि ज्यादातर यहां पर वेजिटेरियन वहीं पर खाया जाता है। तो आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं कोशिश करिए कि आप उसी क्षेत्र का जो लोकल फूड है वो ही ज्यादा यूज करें, वो आपको आपकी बॉडी के सिस्टम के अकॉर्डिंग और बॉडी की जो आपका मैन्युफैक्चरिंग है या जिससे कि आपका बॉडी बनी है वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। यदि आप हरियाणा से हैं आप बहुत ज्यादा राइस की तरफ चले गए या इडली डोसे की तरफ चले गए तो हो सकता है कि वो आपको उस तरीके की स्ट्रेंथ ना दे सके, और या जैसे कि आप हरियाणा में रहते हैं सरसों का तेल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वहां पर या घी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वहां से आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करने लगे। तो ऐसी मेरी अपनी बिलीफ भी है, थोड़ा सा स्पोर्ट्स एंथ्रोपोमेट्री भी इसको सपोर्ट करता है कि आप अपने क्षेत्र का जो लोकल फूड है उसकी तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान दें।
मैं भी एक प्रश्न पूछ लूं जी, यू वांट टू से समथिंग?
ओम शांति। ये जो अभी डिस्कशन चल रहा है उसी में मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा रिगार्डिंग वेज एंड नॉन वेज। नॉन वेज के बारे में एक और साइंटिफिक फैक्ट ये है कि उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को ज्यादा कैलोरीज है वो खर्च करनी पड़ती, वो इजीली डाइजेस्ट है वो नहीं होता। तो जितनी कैलोरीज आप ले रहे उसी खाने को उसी कैलोरीज को डाइजेस्ट करने के लिए एसिमिलेट करने के लिए शरीर को ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। तो दिस इज वन फैक्ट अबाउट नॉन वेज, सो वेजिटेरियन डाइट इज बेस्ट।
ओम शांति। मैम आपके लिए एक सॉल्यूशन मेरे पास है, सोयाबीन की बरी सभी लोग जानते हैं उसको, उसका भी प्रोटीन कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट मटन चिकन इन सबके बराबर है। तो शुरू शुरू में हमारे नेशनल प्लेयर को आप सोयाबीन की बरी से चाप बनती हैं मालूम है, आजकल सब जगह मिलती हैं। राजयोग बताएगा और वो जान चुके हैं। ओम शांति
जी। प्लीज
ओम शांति। सभी प्रदेशों से खेल जगत से आए सभी मेरे युवा खिलाड़ी, मैं सबको एक पैगाम देना चाहता हूं आपको, इस वजह से मैं यहां पर आया हूं। मैं नेशनल चैंपियन बॉडी बिल्डर रहा हूं और 2012 में मैं नेशनल चैंपियन बना था। मैंने वेजिटेरियल डाइट को फॉलो कर और नॉन स्टेरॉइड मैंने नेशनल चैंपियनशिप में पदक जीता। लेकिन मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं साथियों, जो मेरा गेम रहा है बॉडी बिल्डिंग, उसमें नॉनवेज का स्टेरॉइड का दो चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट कोचों के माध्यम से आता है, क्योंकि नॉनवेज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट वो लिखते हैं और डाइट शेड्यूल में 40-40 एग 500 ग्राम चिकन वगैरह वो उसको रखते हैं। लेकिन मैं करीब 3 से 3.5 साल मुझे करीब राजयोग करते हुए हो गए, जितना अनुभव और जितनी शक्ति क्षमता मेरे अंदर राजयोग से बढ़ी मेडिटेशन से बड़ी उसका अनुभव जितना मैं करता हूं वो मुझे पता है। मैंने जब मैं मिस्टर यूपी सबसे पहली बार बना उससे पहले कुछ समय पहले मैं नॉनवेज का इस्तेमाल करता था। जैसे जैसे मैं राजयोग के संपर्क में आया, बहनों के संपर्क में आया, मैंने उसको धीरे धीरे छोड़ा। उसके बाद ही मैं मिस्टर यूपी मिस्टर इंडिया बना जब मैंने अपनी वेजिटेरियल डाइट शुरू कर दी। तो मैं आप सभी यहां पर जो युवा खिलाड़ी पूरे देश के खिलाड़ी अपने अपने फील्ड के आए हैं, मैं दिल से उनको ये बात बता देना चाहता हूं कि अपने अंदर संपूर्ण निश्चय रखें, उस परमपिता परमात्मा पर निश्चय रखें और अपना राजयोग नियमित रूप से अगर आप जितनी मात्रा में बढ़ाएंगे आपके अंदर क्षमता बढ़ेगी और आपके जीवन में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। नॉनवेज कोई पॉसिबल नहीं है, परमात्मा शक्ति और अपनी शक्तियों से बड़ी कोई चीज नहीं है, आप उसको बढ़ाएं। दो पंक्तियों के साथ बस, क्योंकि और भी यहां पर काफी हैं, दो पंक्तियों के साथ मैं सिर्फ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं अक्सर कहता हूं और ड्रग्स के खिलाफ और नशा मुक्ति के खिलाफ और कई अभियान भी हमने अपनी एक स्पोर्ट टीम बनाकर हर जगह प्रदेश अलग अलग जिलों में चलाए हुए हैं। काफी बड़ी संख्या में 16 से 17,000 हमारे साथ यूथ प्लेयर्स जुड़े हुए भी हैं और हम इसी वर्ग से काम भी करते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मुहिम है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता बिना संघर्ष के और त्याग के। जब तक संघर्ष और त्याग की शक्ति हमारे अंदर नहीं है कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट जब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। जय हिंद जय भारत।
इसके बाद हम अपना आखिरी प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्पीकर को देंगे।
मैडम मेरे बाद में पूछ लेना,
मैं आपकी बात ही पूछूंगी।
मेरा नाम कुलदीप फौजी है, मैं गांव राजौंद डिस्ट्रिक्ट कैथल हरियाणा से हूं और सन 2000 में मैं रिटायरमेंट हुआ हूं। वेज और नॉन वेज के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 1990 में हमारी बटालियन जो 13 ग्रेनेड थी वो सियाचिन ग्लेशियर में थी जहां पर टेम्परेचर -60-65 वहां पर वेज और नॉन वेज भी जरूरी था। लेकिन कई पोस्टेज ऐसे थे जिन पर ऊपर अगर नॉन वेज होगा कैजुअलिटी होती थी। एक भीम पोस्ट था वहां पर मना था कि यहां पर नॉन वेज नहीं खाएंगे। 12 आदमी थे उनमें से 5 आदमी ऐसे थे बोले भी जब चाहे कुछ भी हो हम नॉन वेज ही खाएंगे। चलो 2 दिन हुए 4 दिन हुए एकदम से फायरिंग हुई जो कि एक तो बम ऊपर फटता है एक नीचे गिरने के बाद फटता है एक हवा में फटता है। एक हेलीकॉप्टर आया डाक जो देते थे जैसे ही आया तो वो 5 लड़के एकदम जाते हैं एक हवा में और एक नीचे बम फटा। उन 5 की कैजुअलिटी हो गई। मैं सच्चाई कह रहा हूं कि उन 5 की कैजुअलिटी हो गई एकदम से। और जब जो 6-7 आदमी थे उनसे पूछा कि बात क्या है कि इस पोस्ट पर भीम पोस्ट है देवी देवता का वहां भी है पूजा होती है सब कुछ होता है लेकिन जो वहां पर वैज रहते थे वो सुरक्षित रहते थे जबकि वाइन का जरूरी है वहां पर कोई वाइन नहीं पीता था। मेरा सुजेशन यही है कि वैज ज्यादा बेहतर रहेगी। आप एक बार करके देखो। धन्यवाद।
मेरा नाम निष्ठा है, मैं हरियाणा से हूँ, मैं बैडमिंटन प्लेयर हूँ। और अगर हमें कहीं फॉरेन में जाना होता है तो वहाँ पे ओनली नॉन वेज मिलता है। मैं वेजिटेरियन हूँ पर वहाँ पे तो ओनली नॉन वेज मिलता है तो हम क्या खाएं?
आप वहाँ पर स्प्राउट्स खा सकते हैं। और आप ही के क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूँ मैं। आप ये बताएं आप यहाँ पर 2 दिन से स्वच्छ और वेज खाना खा रहे हैं आपको कैसा फील हो रहा है?
अच्छा
अच्छा। आप अपना वर्कआउट करते हैं अब कर रहे हैं साथ में मेडिटेशन भी कर रहे हैं रोज कर रहे हैं तो डे बाय डे आपकी पोटेंशियल एनर्जीज कितनी हायर लेवल पर जा रही हैं तो आपको नॉनवेज की इच्छा ही नहीं होगी। जब क्रेविंग ही नहीं होगी तो आप नॉनवेज खाएंगे क्यों? जहां आपको और अवेलेबिलिटी की बात है तो स्प्राउट्स आपको हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं।
स्प्राउट्स खाना मुझे अच्छा नहीं लगता।
फ्रूट्स खा सकते हैं आप। आप फ्रूट्स खा सकते हैं ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं आप स्प्राउट्स खा सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं वहां पर अवेलेबल।
ओम शांति। मुझे लगता है कि शायद इस बच्चे का जो क्वेश्चन है उसका जवाब मैं अच्छे तरीके से दे सकता हूं। हम सभी भारतीयों की आदत हो गई है कि जो पश्चिम करेगा वेस्ट जिसको करेगा उसको हम बाद में फॉलो करेंगे। योग की जो पद्धति है वो हजारों साल पुरानी पद्धति है उसको बीच में ऑलमोस्ट हमारे जो लोगों ने भुला दिया था उसको। जब से योगा का कॉन्सेप्ट आया है फ्रॉम द वेस्ट तो हम भारतीय भी उसके पीछे पड़ गए हैं। आपको पता होगा कि आज के टाइम में पश्चिम के जो देश हैं वो नॉन वेज को छोड़ रहे हैं और वेज की तरफ उनका रुझान बहुत ज्यादा है। और जितना अच्छा वेज वेस्ट में मिलता है मुझे लगता है कि पूरे भारत में कोई जगह हो सकती है ये जगह हो सकती है जहां पे बेटर मिलता है वेज। लेकिन वेस्ट में जो कंडीशंस हैं उनकी वेज और नॉन वेज की, वो हमारे से बेहतर है। तो आपको बच्चे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम वेस्ट में नहीं आएगी, वहां पे पूरे ट्रेडमार्क बने हुए हैं, पूरे उनके रूल एंड रेगुलेशन है कि वेज खाना मिलेगा आपको और अच्छे वाला वेज मिलेगा, और बहुत ज्यादा लोग वेस्ट के फॉलो कर रहे हैं उस चीज को। तो आपको ये घबराने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ भ्रांतियां हैं, सुनी सुनाई बातें हैं कि वहां पे ये ज्यादा है, वहां पे ये नहीं मिलता। हाँ, थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ सकता है, आजकल वहां पे जो स्टोर्स हैं वहां पे ऑलरेडी डिमार्केशन है कि ये आपका वेज फूड है, ये नॉन वेज है। आपने देखा होगा पैकेट्स के ऊपर एक आता है ग्रीन सर्कल का सिंबल जो है, दैट इज फॉर द वेज, और जो रेड वाला जो सिंबल है वो फॉर नॉन वेज। थैंक यू
सो मच। मेरा लास्ट क्वेश्चन आप सबकी तरफ से है कि अगर किसी भी प्लेयर को कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो जाए तो क्या डाइटरी सप्लीमेंट्स उसको लेने चाहिए, लाइक कैंसर, डायबिटीज और एनी अदर डिसऑर्डर, जैसे अपने युवराज, उन्होंने काफी सप्लीमेंट्स लिए, नेचुरल सप्लीमेंट्स लिए, तो थोड़ा उसके बारे में गाइडेंस देंगे।
जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं वो आपके एनवायरनमेंट से आपको मिल रहे हैं, आपकी सोसाइटी से मिल रहे हैं, डाइट से नहीं। डाइट आपको एज अ हेल्प करेगी उन लाइफस्टाइल को बीट करने के लिए, और आप जो भी डिसऑर्डर है आपका वो आप उसको क्योर कर सकते हैं। और आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, जितना आप वेज और स्वच्छ खाना खाएंगे उतना उससे जल्दी रिकवर करेंगे। वाटर इंटेक अपना ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, ऑक्सीजन लेवल ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, मेडिटेशन लेवल अपना ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, कॉन्सेंट्रेशन पावर अपनी बढ़ाएं, और सबसे मेन चीज माइंड पावर एंड विजुलाइजेशन अपना एक्सट्रीम हाई पर ले जाएं। नेचुरल सप्लीमेंट्स दीज आर द स्प्राउट्स एंड द फ्रूट्स, वीट ग्रास।
थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया इस सेशन को। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर अजीत सिंह से, जो स्पेशलाइज्ड है इन एथलेटिक्स, एसोसिएट प्रोफेसर पीजी गवर्नमेंट कॉलेज चंडीगढ़, वो अपना टॉपिक इनिशिएट करेंगे।
ओम शांति। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा इस संस्थान का जिन्होंने मुझे यहां पे आने का और इस मंच पे बोलने का मौका दिया। उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं नीरज का, जो कि मेरे स्टूडेंट रहे हैं यूनिवर्सिटी में, कुरुक्षेत्रा में मास्टर्स में। तो इन्होंने मुझे फोन किया कि सर ऐसे ऐसे उस जगह के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस है और आपने योग और ओलंपिज्म के बारे में कुछ बोलना है। तो मैंने कहा कि इस संस्था को तो मैं जानता हूं, मेरे टीचर हैं, एक सीनियर प्रोफेसर हैं डॉक्टर संगीता चौधरी, वो जुड़े हुए हैं, वो मुझे इनवाइट करते रहते हैं। तो ये कहने लगे ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा। अभी पिछले दो दिन से हमने कोई भी सेशन है मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक मिस नहीं किया, और आज के सेशन में हमने राजयोग के बारे में, कल के सेशन में राजयोग के बारे में बड़ा ही बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया। हालांकि मैंने योगा वगैरह पढ़ा है, जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट वगैरह दे देते हैं कोर्सेज में, लेकिन जितनी सुंदर एक्सप्लेनेशन यहां पे राजयोग के बारे में, योग के बारे में, और मैं तो ये कहूंगा कि न्यूज़पेपर में आप लोगों का एक एडिशन आता है इसके बारे में, ज्योति पुंज के बारे में, तो वो पढ़ के इतना क्लियर नहीं हुआ जितना आज के एक सेशन में उन्होंने बताया कि भगवान क्या है, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। आज मुझे बोलने का मौका मिला है जो ओलंपिज्म की जो वैल्यूज है उनके बारे में, उनमें एक वैल्यू है रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। हमारे यहां पे गीता में भगवान ने बोला है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा जो पृथ्वी है इस पे जो रहने वाले जीव हैं हम एक परिवार का हिस्सा है। तो हमारी जो पुरानी जो परंपरा है, जो फिलोसॉफी है, वो बताती है कि किस तरह हम जल थल वायु और इसके ऊपर जो भी क्रिएचर हैं, जो भी प्राणी हैं, वो सब एक हिस्सा है, एक परिवार का हिस्सा है, हमने एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है। जो पिछले दो दिन के सेशन राजयोग के बारे में यहां पे सुनने के बाद, कुछ समझने के बाद, मैं इतना कह पाऊंगा कि जैसे आत्माएं हैं, इतनी सारी आत्माएं हैं और उन्होंने एक ज्योति का जो पुंज है उसमें जाके मिलना है, दैट इज द अल्टीमेट एम ऑफ आवर्स। हम सभी का एम यही है कि हम अपनी जो जीवन की यात्रा पूरी करने के बाद हम उस पुंज में जाके मिले और उसका हिस्सा है वो बने जो कि हम पहले से ही थे। तो ओलंपिज्म के बारे में जो सबसे ज्यादा वैल्यूज की जो बात की है वो है इसके संस्थापक, एक जो फ्रांस के एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षाविद थे, आप सभी ने नाम सुना होगा, बैरन द कुबर्टिन। तो उन्होंने कहा है कि आपको बंदूकें, गोला बारूद, उन्होंने इंग्लिश में यूज किया है कैनन्स एंड गन्स, तो मैं हिंदी में थोड़ा सा बात करूंगा कि हमें गोला बारूद एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने की बजाय जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको दूसरे देशों में भेजना चाहिए ताकि वो शांति के बारे में, पीस के बारे में, भाईचारे के बारे में बात है वो कर सके। और हमारे पहले जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने भी कहा था एशियन गेम्स में कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है दे आर द बेस्ट एम्बेसडर्स ऑफ द नेशन, वो दूसरे, वो हमारे देश का अच्छा प्रतिनिधित्व है वो कर सकते हैं। अब कुछ एक घटनाएं हैं ओलंपिक्स की जो रामनिवास जी ने भी बताई हैं, इसी से रिस्पेक्ट से जुड़ी हुई कुछ एक घटनाएं हैं। पहला जो मॉडर्न ओलंपिक्स था वो एथेंस में हुआ था 1896 में, 1896 में। उसमें जो होस्ट कंट्री था, जिस देश में ओलंपिक हुए थे, उसका सिर्फ एक ही मेडल आया था मैराथन में। जो एथलीट था, मैराथनर था, उसका नाम था स्पाइरोडोन लोइश। जब इसने 42.195 किलोमीटर का डिस्टेंस कंप्लीट किया, अपनी मैराथन कंप्लीट करी, तो वहां के तीन प्रिंस थे, तीन राजकुमार थे, जिसमें जो सबसे बड़े प्रिंस थे वो क्राउंड प्रिंस थे, बड़े राजा के रूप में थे। तीनों ने उस मैराथनर को अपने कंधे के ऊपर उठा लिया था और वो जो मैराथनर था वो एक गडरिया था, एक चरवाहा था, जो भेड़ बकरियां हैं वो चराता था। तो इस तरह का जो रिस्पेक्ट है वो ओलंपिक के थ्रू उस टाइम में, उस प्राचीन टाइम में हमें देखने को मिलती है। अगर हम और भी पीछे एंशियंट ओलंपिक्स की बात करें तो वहां पे बहुत सारी अच्छी चीजें हैं वो नहीं रही हैं, जैसे कि महिलाओं को पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता था। इवन ये जो मॉडर्न ओलंपिक्स थे इसमें भी फर्स्ट ओलंपिक्स में महिलाओं को पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता था, लेकिन बड़े कम लोगों को पता है कि जब ये मैराथन हुई फर्स्ट ओलंपिक्स की वहां पे पुरुषों की, उसके बाद वहां की जो महिलाएं थी एथेंस की, उन्होंने कहा कि हम भी मैराथन दौड़ेंगी। तो कुछ सिलेक्टेड जो बहनें थी वहां की, उन्होंने रात को ये जो मैराथन है वो कंप्लीट की, पूरा डिस्टेंस 42.195 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो रात को पूरा। मलिक साहब ने भी बात करी एम्बेसडर्स की कि स्पोर्ट्स के थ्रू हम अपनी कल्चर्स के बारे में, हम अपने आइडियाज के बारे में दूसरे लोगों को बता सकते हैं। ओलंपिक का जो प्लेटफॉर्म है वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ है, 1945 में उसकी स्थापना हुई थी पीस के लिए, शांति के लिए, विश्व शांति के लिए। तो उसके जो सदस्य देश हैं वो ऑलमोस्ट 197 के आसपास हैं और जो ओलंपिक का पार्टिसिपेशन है वो लगभग 204 जो देश हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये संगठन है, पॉलिटिकल संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ, उससे भी ज्यादा लोग, उससे भी ज्यादा देश इस आयोजन में पार्टिसिपेट करते हैं। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मुझे दो जगह सबसे पहले ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। पहली जगह थी LNIP ग्वालियर और दूसरी यूनिवर्सिटी थी गुरु नानक देव जी यूनिवर्सिटी अमृतसर। तो जब हम प्रैक्टिस करते थे यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में, कॉलेज के ग्राउंड में, तो वहां पे हम ये सोचते थे कि वहां पे तो जैसे हम बोलेंगे नहीं किसी को, वहां पे पता नहीं क्या होगा। जब फर्स्ट टाइम पे यूनिवर्सिटी में गए थे वहां पे तो परफॉर्मेंस हमने देनी है, वहां पे तो हमने जीतना है, वहां पे तो हमने ये नहीं बताना। जब हम फर्स्ट टाइम पे वहां पे LNIP ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे उतरे तो वहां पे जो लोग थे वो बोले कि कहां से आए हैं, हमने कहा वहां से आए हैं, तो और भी टीमें बैठी हुई थी तो वो बताने लगे सभी। तो हमें तो देख के बड़ा वो अचरज सा हुआ। जब हम छोटे बच्चे थे या स्कूल में थे तो हमें बताया जाता था कि साउथ में इस तरह का ट्रेडिशन है, नॉर्थ ईस्ट में इस तरह का ट्रेडिशन है, और जब सारी यूनिवर्सिटीज ऑलमोस्ट 237 यूनिवर्सिटीज ने वहां पे पार्टिसिपेट किया था तो वहां पे देख के लगा कि देखो कितना भाईचारा है आपस में। हम ये नहीं है कि यहां पे लड़ने आए हैं, कंपटीशन है लेकिन कंपटीशन के साथ साथ भी एक कोऑपरेशन है वहां पे। और आप गेम्स में देखेंगे जैसे यादव साहब ने बताया कि किस तरह से उसने उसका जो अप्रोच रन है वो सेट किया, आपने देखा होगा कि कई जगह किसी एथलीट के जो स्पाइक्स है वो गुम हो गए थे लास्ट मोमेंट पे तो दूसरे एथलीट ने उसको प्रोवाइड करे। हॉकी के बारे में हम कई चीजें पढ़ते हैं कि किस तरह लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, स्टिक्स वगैरह प्रोवाइड करते थे। ज्यादा ना बोलते हुए मैं लास्ट में एक बात और कहूंगा कि आज के टाइम में हम देखते हैं कि इंसान का इंसान के प्रति जो प्यार है वो खत्म हो गया, या हम लोग भूल गए कि हम कौन हैं, आपस में कौन हैं। और अगर हम हमारे देश की बात करें, हमारी बहनों के प्रति जो सूचनाएं हम अखबारों में, रेडियो में, टेलीविजन में सुनते रहते हैं, उसका राजयोग के थ्रू और जो ओलंपिक स्पोर्ट्स के थ्रू अगर हम उसकी जो फिलोसफी है उसको लोगों को बताएं। अब एक आप लोग मुझसे, कई लोग असहमत हो सकते हैं कि भी मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्य है हमारा कि ओलंपिक्स में या गेम्स में सिर्फ हम जीतने की बात करते हैं। कितने लोग हैं जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं कंट्री की तरफ से? कुछ एक सिलेक्टेड जिनमें बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन एक ह्यूज पॉपुलेशन है, इतनी सारी जनसंख्या है, उसका क्या होगा, उसको कौन सिखाएगा? एक कॉन्सेप्ट है भारत में स्पोर्ट्स फॉर ऑल, सभी के लिए खेल। खेलने का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ पदक जीत लिए, उसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ करोड़, कुछ पैसे, कुछ जमीन आपने ले ली। और मुझे माफ करें जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है देश के, मुझे बड़ा बुरा लगता है जब वो बोलते हैं कि मुझे प्लॉट है वो गुड़गांव में नहीं दिया गया, मुझे प्लॉट है वो वहां पे दे दिया गया। भाई आपको देश ने इतना कुछ दिया है, आप सिर्फ गुड़गांव में ही ट्रेनिंग कराएंगे क्या? सिर्फ मैं चंडीगढ़ में ही ट्रेनिंग कराऊंगा? वो जो हमारी सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है, रूरल पॉपुलेशन है, गांव में लोग बसते हैं, उन लोगों की हेल्थ का, उन लोगों की सेहत का, उन लोगों की जो समस्याएं हैं, मानसिक समस्याएं हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा? उनके बारे में हम लोग सोचेंगे। तो मेरी ये गुजारिश है सभी से कि यहां से जो आप राजयोग के बारे में, योग के बारे में, मानवता के बारे में, पीस के बारे में जो सीख के जाएं, उसका आप कंट्रीब्यूशन करें, क्योंकि कोई भी चीज जब आप बांटते हैं तो वो कम नहीं होती, वो चीज बढ़ जाती है। तो सभी जब आप अपने गांव में, अपने शहर में, कस्बे में जाएं तो वहां पे इस चीज का प्रचार करें, लोगों को समझाएं कि राजयोग है क्या और इसका उद्देश्य क्या है और किस तरह से हम बीमारियों का, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।
थैंक यू सो मच डॉक्टर अजीत सिंह। अभी मैं डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल से गुजारिश करूंगी जो नेचुरोपैथ हैं दिल्ली से, वो अपने व्यू पॉइंट शेयर करें।
थैंक यू। ओम शांति। ओलंपिज्म की हम बात कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज की बात कर रहे हैं, बैलेंस बिटवीन बॉडी, विल एंड माइंड। हम दो दिन से राजयोग कर रहे हैं, पूरा सब कुछ एक सिस्टमैटिक, एक पूरी आइडियल दिनचर्या को हम फॉलो कर रहे हैं। सुबह 4 बजे उठना, उसके बाद मेडिटेशन करना, मेडिटेशन के बाद अपना ब्रेकफास्ट करना, अपनी माइंड पावर और अपनी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना, उसके बाद प्रॉपर रेस्ट लेना, उसके बाद फिर से अपनी प्रैक्टिसेस करना और फिर उसके बाद प्रॉपर डिनर करना, एक आइडियलिस्टिक हम लाइफस्टाइल में हैं, यही हमारी ओलंपिक वैल्यू है। आज की एक ये रिसर्च कहती है कि लर्निंग टेक प्लेस इन द होल बॉडी नॉट जस्ट इन द माइंड। आपका लर्निंग कैपेसिटीज कंप्लीट पूरी बॉडी की होनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक माइंड की। आपकी फिजिकल एक्टिविटीज डेली होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिसेस डेली होनी चाहिए, यही हमारे को राजयोग सिखाता है। एक निश्चित दिनचर्या होनी चाहिए, हर एक चीज का समय निश्चित होना चाहिए कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक अपना यह प्रैक्टिस करनी है, तो ही एक आप एक आइडियलिस्टिक राजयोगी बनेंगे और एक ओलंपिस्ट बनेंगे। जहां आपने अपनी प्रैक्टिसेस इंप्रूव करी, वहीं आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, वहीं आपका बॉडी विल एंड माइंड बैलेंस फॉर्म में आ गया। ओम शांति।
थैंक यू सो मच डॉक्टर हिमांशु। और मैं साथ में ये कहना चाहूंगी कि हमारे बीच में बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स हैं ये, आप लोग इनके साथ अलग से भी बात कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप इन सबसे पूछ सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं। अभी मैं लास्ट स्पीकर को रिक्वेस्ट करूंगी, मिस्टर भीष्म सिंह, जिनकी स्पेशलाइजेशन क्रिकेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर CCS यूनिवर्सिटी मेरठ।
ओम शांति। धन्यवाद। लास्ट स्पीकर जो होता है वो भी यदि सत्र का अंत हो तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। मैं जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है बहुत जल्दी से उसको समाप्त कर दूंगा। हम यहां पर ओलंपिज्म के रिप्रेजेंटेटिव बनकर आए थे टू बी ऑनेस्टली, मगर पिछले दो दिनों से राजयोगी भी बन गए। ओलंपिक वैल्यूज जो एजुकेशनल वैल्यूज हैं उनकी हम एक एक करके, हमने पांचों ने चुना था कि हम एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे, बहुत बात होगी इसके बारे में। मैं थोड़ा सा इस टॉपिक से हट जाता हूं और मैं लाता हूं मानसिक इनपुट, जो हमारा मेंटल, यान चैपल, हमने आपने सबने सुना होगा क्रिकेट में, ग्रेग चैपल के बड़े भाई, उन्होंने कहा है कि जो क्रिकेट में बैटिंग है वो 90% ब्रेन है, मेंटल है, केवल 10% स्किल है। तो उसी प्रकार से हम भले ही कितने ही फिजिकली स्ट्रांग हो जाएं, बहुत सारी टेक्निक सीख लें, जब प्लेयर एक्चुअल कंपटीशन में पहुंचता है तो वहां पर सबसे ज्यादा जो काम आती है उसकी मेंटल स्ट्रांगनेस आती है, मेंटल टफनेस आती है, और वो मेडिटेशन के बिना अधूरी है। तो मुझे तो एक नया राह मिल गई है, एक ज्योति मिल गई है, और मुझे उम्मीद है कि जितने भी युवा और हमारे पूर्व खिलाड़ी, मैं देख रहा हूं कि हमारे इस गैदरिंग में हमारे पूर्व खिलाड़ी बहुत हैं, जिन्होंने बहुत समय दिया है पूरे देश की सेवा के लिए, यहां से जाएंगे लाभान्वित होंगे, साथ में हम दोनों मिलकर राजयोग और ओलंपिज्म मूवमेंट चलाएंगे। मुझे अभी हम कल बात कर रहे थे APTC पूना से भी, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक वो चलाई हुई है, यदि हम सब लोग मिल जाएं इकट्ठे तो वो दिन दूर नहीं है जब हम 6 की जगह 60 मेडल प्राप्त करेंगे ओलंपिक्स में। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।
थैंक यू सो मच मिस्टर भीष्म सिंह। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर राकेश मलिक से कि वो इस सेशन को कंक्लूड करें।
मैं अपने पांचों जो मेरे सहभागी हैं उनकी तरफ से आप सबका धन्यवाद करता हूं और आप सबसे फ्यूचर में सहयोग की उम्मीद रखता हूं, और एक आप सभी से गुजारिश करता हूं कि जो हमारा आने वाला फ्यूचर है, जो भविष्य है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको आप ओलंपिज्म और राजयोग की दोनों फिलॉसफियों को मिलाकर उनको एजुकेट करें और कोशिश करें कि आगे आने वाले सत्रों में आप अपने बच्चों को भी यहां लेके आए ताकि उनको सीधा ही संपर्क यहां राजयोग से हो, क्योंकि जो आप जाके किसी को सिखाओगे वो इतना इम्पेक्टेड नहीं होगा। क्योंकि हम भी आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हम नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो अपने बच्चों को साथ लेके आएंगे, अपनी फैमिली को साथ लेके आएंगे, ताकि हम यहां से मैक्सिमम कुछ गेन करें और आगे अपने समाज को दे सकें। धन्यवाद। सभी का धन्यवाद और बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि ये अनमोल पल हैं और याद आएंगे ये पल। ऐसा परिवार जहां आप अपने परिवार को लेकर आ सकते हैं। आजकल ऐसा माहौल, ऐसा वायुमंडल बहुत कम हो गया है और जितने भी दिन आप यहां हैं, जितने भी पल आप यहां हैं, उसे पूरी तरह से यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए। इस एनर्जी को अपने अंदर भरने की कोशिश कीजिए।
देखो, हमारा ये सेशन न्यूट्रिशन एंड डाइट के ऊपर था तो डॉक्टर किसी कारण आ नहीं पाए और पूरा चर्चा न्यूट्रिशन एंड डाइट के ऊपर ही हुआ है। कई ऐसे एथलीट थे, मैराथनर एक शर्मा जी गांधीनगर में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, तो फुल मैराथन में उनको मेडल ही नहीं मिल रहा था कई साल से। जब यहां आए, यहां से जाने के बाद सीधा उन्होंने अपना डाइट चेंज किया एंड नेक्स्ट ईयर ही वॉन द गोल्ड मेडल। तो ऐसे उसका रीजन जैसे सर ने अभी बताया कि हम नॉनवेज खाते हैं तो उसमें कैलोरीज ज्यादा लगती हैं उसको डाइजेस्ट करने में, और इसका पूरा आर्टिकल मेरे पास है, जिनको भी इसके बारे में जानकारी लेनी है वो हमसे मिले। थैंक यू ऑल द पैनलिस्ट। तो यू कैन जस्ट ज्वाइन अस, हम लोग वीडियो फिल्म नीचे से भी देख सकते हैं।
Burden be, then I.